थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि राजा बेलशस्सर ने अपने मित्रों के साथ में परमेश्वर के भवन से जो पात्र मंगाए गए थे, लाए गए थे, उनका अनुचित उपयोग किया, उसमें मदिरा पिया और तब हमने देखा कि परमेश्वर का हाथ दीवाल में कुछ लिखा और जिसके अर्थ को दानियल ने समझाया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज हम जो कुछ भी अध्ययन में सीखें अपने जीवन के लिए ग्रहण कर सकें, उसके मुताबिक चल सकें। हर एक श्रोता भाई बहनों को बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, शैतान और संसार के छल प्रपंच से बचाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार और परेशान है, चिंता और बीमार अवस्था में है। पिताजी, आप उन्हें छुए, चंगाई दे, अपनी शांति दे। आज के वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए आप मेरे साथ दानियल नबी की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 27 पद को निकाल लीजिए। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। यहाँ पर जो शब्द है तकेल, बेबीलोन को परमेश्वर ने तराजू में रख कर तौला और वह हल्का पाया गया। अतः परमेश्वर जिसने बेबीलोन को ऊंचा उठाया था, वही परमेश्वर अब उसे गिराएगा भी। क्यों? क्योंकि बेबीलोन परमेश्वर के मापदंड में खरा नहीं उतरा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 और 3 में हम एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दीपदानों के मध्य खड़ा है, अर्थात उन कलीसियाओं के मध्य उपस्थित है। वह बत्ती को काटकर जला हुआ भाग हटाता है, तेल डालता है और जो ठीक से नहीं जलते उन्हें बुझा देता है। वह आज भी कलीसियाओं को परखता है। हम तो तरह तरह के तराजू को काम में लेते हैं, परंतु परमेश्वर का तराजू अलौकिक है और वह प्रत्येक कलीसिया से कहता है, पश्चाताप करो क्योंकि तुम तौल में हल्के पाए गए हो। वह आज भी आपसे और मुझसे यही कहता है, हमारी धार्मिकता अधूरी ही नहीं, मैले चित्रों के समान है। केवल प्रभु की धार्मिकता तौले जाने पर पूरी निकलेगी। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 21 से 23 पद में पौलुस कहता है, परंतु अव्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मित्रों देखिए परमेश्वर कैसे मनुष्य को उसके कर्मों पर आंकता है। तो आइए हम पढ़ें दानियल 5:28 को। लिखा है, परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। परेश ऊपर सीन का एक वचन है, इसका अर्थ है विभाजन। बेबीलोन विभाजित किया जाएगा और मादी तथा फारसी जातियों को दे दिया जाएगा। सोने के सिर का समय पूरा हो गया है, अब चांदी के वक्ष और हाथों का समय आएगा। परमेश्वर पृथ्वी के राज्यों का सर्वे सर्वा है। यहेजकेल नबी की पुस्तक 21:27 में परमेश्वर कहता है, मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। मसीह के आगमन तक परमेश्वर राज्यों का तख्ता पलटता रहेगा। आप में से कुछ को याद होगा कि हिटलर और स्टालिन का भी आतंक छाया हुआ था, परंतु अब सब कुछ समाप्त हो गया है। परमेश्वर सर्वे सर्वा है और प्रभु यीशु दानियल के पुस्तक 2:34 का पत्थर है जो बिना हाथों के काटा गया था। वह एक दिन इस पृथ्वी पर आ जाएगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। दानियल 5:29 में हम पढ़ते हैं, तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। मेरे मित्रों यहाँ पर देखिए कि तीसरे शासक का उल्लेख आता है। दानियल की पुस्तक कितनी सही है। नबोनिदुस राजा था और उसका पुत्र बेलशस्सर दूसरा राजा था। हम आगे देखते हैं बेबीलोन का पतन, उसी रात भविष्यवाणी पूरी होती है। दानियल की पुस्तक 5:30-31 में लिखा है, उसी रात कस्तियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। मेरे प्रियो, जब वे भोज का आनंद ले रहे थे तब मादी सेना बेबीलोन के शहरपनाह के नीचे नहर के प्रवाह मार्ग से होकर भीतर प्रवेश कर रही थी। यह नहर पारात नदी से नगर के लिए पानी की व्यवस्था हेतु लाई गई थी। इतिहास से प्रकट है कि मादी सेना भीतर प्रवेश कर गई और पहरुओं को उसका आभास भी नहीं हुआ। बेलशस्सर का वध किया गया क्योंकि वह तौल में हल्का निकला था। परमेश्वर ऐसा भी करता है, उसका नाप तौल सर्वथा भिन्न है। रोमियों की पत्री 3:23 में वह हम सबसे कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जी हाँ, हम परमेश्वर के नाप तौल में खरे नहीं उतरते हैं। हम आज परखे नहीं जा सकते क्योंकि हम खोए हुए हैं, परंतु परमेश्वर हमारे लिए उद्धार लाया है। बेलशस्सर ने परमेश्वर को तुच्छ जाना और परिणाम स्वरूप उसका सिर काटा गया। मेरे मित्रों, इस चांदी के राज्य का राजा दारा बना। उसके अकस्मात ही बेबीलोन पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। बेबीलोन के पतन की गवाही यशाया नबी के पुस्तक 20 में दी गई है। भविष्य में परमेश्वर एक और बेबीलोन को नष्ट करेगा जिसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 में पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य की अभिमानी सभ्यता का अंत होगा। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर 5 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को 6 से जारी रखेंगे। अब तक तो दानियल बेबीलोन के राजाओं के अधीन सम्मान का पात्र रहा था, परंतु अब क्योंकि फारसी राजा ने बेबीलोन को जीत लिया था, वह फारसी राजा के अधीन है, क्योंकि वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या बुरा हम नहीं जानते। अध्याय 6 में आगे का वृतांत है, जिसका विषय है मादी राजा दारा के अधीन दानियल का स्थान, दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र, दानियल की प्रार्थना, शेरों की मान में दानियल, तब दानियल की मुक्ति, दानियल की समृद्धि और दारा की आज्ञा। मेरे प्रियो, आइए हम आगे बढ़ें। दानियल की पुस्तक का 6वां अध्याय बाइबल का सबसे अधिक प्रसिद्ध अध्याय है और निश्चय ही इस पुस्तक में सबसे अधिक पढ़ा भी जाता है। यह अध्याय दानियल को शेरों के सामने डालने का वृतांत सुनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दानियल ने शेरों के साथ तो एक ही रात बिताई थी, परंतु उसने 17 वर्ष की आयु से 90 वर्ष की आयु तक अपना संपूर्ण जीवन उन अन्य जाति राजाओं के साथ बिताया था, जो शेर के साथ रहने से कहीं अधिक जोखिम भरा था। मेरे प्रियो, यहां शेर तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, परंतु नबुकदनेस्सर, नबोनिदुस, बेलशस्सर, मादी दारा और कुस्रो जो अन्य जाति राजा थे, उनके साथ राजमहल में रहना दानियल के लिए और अधिक जोखिम का काम तो था, परंतु वह सौभाग्यशाली था कि वह इनमें से कुछ को जीवित परमेश्वर के ज्ञान और भय में ला पाया। क्या आज आप जहां रहते हैं वहां परमेश्वर के भय, उसके प्रेम को बताते हैं? दानियल ने शेरों की मान में एक ही रात बिताई थी, परंतु हम इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि इसमें हमारे लिए संदेश है। यह अध्याय दानियल की पुस्तक के इतिहास पक्ष को समाप्त करेगा। ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख यहाँ इसलिए किया गया है कि उनमें हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य छिपा हुआ है। दानियल के जीवन की यह घटना परमेश्वर के रक्षक सामर्थ का एक और उदाहरण है और यह एक और उपमा है जिसके द्वारा परमेश्वर अंत समय में अपने बचे हुए विश्वासियों की रक्षा करेगा। महाक्लेश में सुरक्षा। यह अध्याय 3 का प्रतिरूप है, जहां दानियल के 3 साथियों को परमेश्वर ने धधकते हुए भट्ठे में से बचाया था। अध्याय 3 में पूछा जा रहा था कि दानियल कहाँ है, तो यहाँ अध्याय 6 में पूछा जाएगा कि दानियल के वे 3 साथी या मित्र कहाँ हैं, क्योंकि वे भी दानियल के साथ परमेश्वर के आज्ञाकारी ही रहे होंगे। अति संभव है कि इतने समय बाद वे जीवित न हो। अतः अध्याय 6 और अध्याय 3 यह महाक्लेश में परमेश्वर के भक्तों के उद्धार के 2 अलग अलग पक्षों के प्रतीक हैं। इन भक्तों में इसराइल और अन्य जातियां दोनों हैं। अध्याय 3 मानवीय घृणा और सताव के दबाव पर बल देता है, परंतु इस पद में शैतान की घृणा और सताव पर बल दिया गया है। अतः आज हमारे लिए जो संदेश है वह पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में निहित है। लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप और मैं शैतान अर्थात शेर की मांद में हैं। यह संसार शेर की मांद है, जिसमें एक बहुत बड़ा शेर गरज रहा है और चहलकदमी करते हुए खोज रहा है कि किसको फाड़ खाए। पत्रस उसे हमारा शत्रु शैतान कहता है। मेरे प्रियो, आइए हम आगे बढ़ें और देखें मादी राजा दारा के अधीन दानियल का स्थान। अध्याय 6 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। इस अध्याय के आरंभ में ही हम ऐतिहासिक घटना को देखते हैं। बेबीलोन का राजा जो मूर्ति का सोने का सिर था विलोप हो गया है, वह विश्व शक्ति के स्थान से हट गया है और अब वहां मादी फारसी राज्य है। नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति का चांदी का वक्ष और हाथ दारा ने केवल 2 वर्ष राज्य किया। उसकी बहन मुंडेन और फारसी केम्बिसेस का पुत्र कुस्रो उसके स्थान पर राज करने बैठा। इसी कारण मादी फारसी राज्य एक हुए थे और अब वे विश्व विजेता थे। यद्यपि साम्राज्य बदल गया है, दानियल का पद नहीं बदला, वह अब भी मादी फारसियों का प्रधानमंत्री है। अध्याय 2 के अध्ययन में हम देख रहे थे कि कई धातुओं के संयोजन से बनी मूर्ति में क्रमशः कमी आती जा रही थी। चांदी का महत्व सोने से कम है, इसलिए इस राज्य का महत्व भी नबूकदनेस्सर के राज्य से कम है। नबूकदनेस्सर स्वयं में सक्षम एवं आत्मनिर्भरता था, वह अकेला ही तानाशाह था, परंतु दारा के साथ उत्तरदायित्व वहन करने वाले 120 अधिपति थे जो दारा के साथ राष्ट्र का मार्गदर्शन करते थे। इन 120 अधिपतियों पर दारा ने 3 अध्यक्ष नियुक्त किए थे जो राजा और अधिपतियों के मध्य संपर्क अधिकारी थे। इस प्रकार उत्तरदायित्व और शासन विभाजित किया गया था कि राजा को कोई भी हानि न पहुंचे। दानियल इन 3 अध्यक्षों में से एक था। इससे संकेत मिलता है कि अधिपति राजा की जड़ न खोद पाए और न ही उसके कोष में हेरा फेरी करने पाए। दानियल इन 3 अध्यक्षों में प्रमुख था। मेरे विचार में वह इस समय लगभग 80 या 90 वर्ष का था। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। मेरे मित्रों, दानियल उनमें वरिष्ठ तो था ही, परंतु साथ ही साथ वह सबके ऊपर भी था। दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी, अर्थात वह आत्मा से भरा हुआ था। राजा को उस पर ऐसा विश्वास था कि उसने उसे अपना दाहिना हाथ बनाया। आज हमारे बीच में जब कोई बड़े नेता होते हैं या बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके साथ कोई एक दाहिना हाथ होता है जिससे हम उसका सहयोगी समझते हैं। दानियल को भी ऐसा ही रखा गया। दानियल के विनाश का षड्यंत्र भी हम देखते हैं, दानियल 6 अध्याय के 4 पद में। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। मेरे प्रियो, यह तो निश्चित है कि यदि कोई पहले स्थान पर है तो आपकी जासूसी करने वाले बहुत से लोग होंगे। चाहे आप कलीसिया में हो या राजनीति में हो, स्कूल में हो या घर में ही क्यों ना हो, क्योंकि लोग आपसे जलन रखेंगे। वे आपकी दुर्बलता को आपके विरुद्ध हथियार बना देंगे। दानियल का जीवन असामान्य था, अतः वे न तो उसके चरित्र में और न ही उसके अतीत से ऐसी कुछ बात खोज पाए कि उसके विरुद्ध में कुछ दोष लगाया जाए, परंतु वे तिल का ताड़ बनाना चाहते थे। ऐसे अनेक राजनेता और ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, काश मेरा जीवन आचरण भिन्न होता। मनुष्य के लिए ऐसा कहा जाना एक सामान्य सी बात है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर की संतान को ऐसा जीवन जीना है कि उस पर लगाए गए दोष निराधार सिद्ध हो जाए। आप किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, परंतु आपका जीवन आचरण उन्हें झूठा अवश्य सिद्ध कर सकता है। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय के 15 पद में पौलुस सब विश्वासियों से आग्रह करता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के लिए निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। अब पौलुस की व्यक्तिगत गवाही को आप देखिए, प्रेरितों के काम 24 अध्याय के 16 पद में लिखा है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर से मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। दूसरे शब्दों में पौलुस रात में सुख की नींद सोता था क्योंकि उसका विवेक उसे कोसता नहीं था। यह हर एक विश्वासी के साथ होना आवश्यक है। किसी ने कहा है कि विवेक वह है जिसका आनंद भला मनुष्य ही ले सकता है। दानियल के पुस्तक 6 अध्याय के 5 पद में आगे लिखा है, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। मेरे प्रियो, दानियल भिन्न था। परमेश्वर ने अपने लोगों को भिन्न बनाया था। जब वह नबूकदनेस्सर के राजभवन में लाया गया था, तब उसने भोजन को भी भिन्न मांगा। वह उस भोजन में से नहीं खाया जिसे राजा ने उसे दिया। उसी समय से दानियल का जीवन भिन्न था। इस बात को वहां सब लोग जानते थे, अतः उन्होंने कहा कि उसे पकड़ने के लिए, उसमें दोष ढूंढने के लिए उसकी धार्मिक आस्था को देखना होगा। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। ऐसी बात जो राजा के सामने उस पर दोष लगाया जा सके। ये कूटनीतिज्ञ दानियल में एकमात्र दुर्बलता जो देख सकते थे, वह उसकी आस्था में ही थी। दूसरे शब्दों में वे दानियल की भलाई को ही उसकी बुराई बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि दानियल विश्वास में कट्टर है और परमेश्वर पर निर्भर करने वाला विश्वास योग्य पात्र है। इस प्रकार वे राजा और दानियल के बीच भेद उत्पन्न करना चाहते थे। मेरे मित्रों, जब आप परमेश्वर के निकटता में एक विश्वास योग्य जीवन जीना चाहेंगे, तो निश्चय ही शैतान आपके जीवन में विघ्न उत्पन्न करेगा। किसी न किसी माध्यम से आपको गिराना चाहेगा, जिस प्रकार से हम दानियल के जीवन में देख रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति कितना गहरा है। मैं यह भी नहीं जानता कि आप किस प्रकार की कठिनाइयों में हैं। यदि ऐसे जीवन आप जी रहे हैं, तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर में स्थिर रहने के द्वारा आप उसकी महिमा करने पाएंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर दानियल के लिए भी दोष ढूंढा जा रहा है। हम साधारण लोगों के लिए भी आज संसार ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि शैतान इस ताक में है कि कब किसको फाड़ खाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हमारा।